महिला की राजनीतिक यात्रा कठिन रही है और कितना मुश्किल है, बंद हो रहा है तो इतनी मुश्किल है राजनीतिक यात्रा, ये आसान नहीं है, घर से ही शुरू होती है और शायद गंज से शुरू होती है। तो ये सारे सवाल मुझे आपके सामने आए। अब आप प्रश्न पूछें, अभी तो बहुत कुछ सुना तो आप सबने हैं और सब विद्यार्थी हैं, लेकिन मुझे लगता है आप पांच सवाल एक राउंड में और फिर उसके बाद शायद अगर समय आए तो पांच और छोटा छोटा फोकस क्वेश्चन पूछिए।
औरत की बात है, उनको हर कोई चाहता है, हम भी चाहते हैं। मेरे भैया के ऐसे उदाहरण हुआ कि पब्लिक निकल आएगा, उनके साथ हमदर्दी है, चाहते हैं कि सिक्योरिटी उनको मिले, लेकिन ये चीज तालीम से बदलती है। बच्चे जब छोटा होते हैं तो उसका दिमाग सेट किया जाता है, तो ये चीज अगर आप सिलेबस में डालें, बहुत सारे लेसन है वहां पे, उसमें औरत के ताल्लुक से, उनके रिस्पेक्ट के ताल्लुक से सिलेबस में होने चाहिए सबक। अब एक दूसरी बात की वुमेन पावर, आप आइए रिप्रेजेंटेटिव बनिए, हम आपको रिपोर्ट देंगे, आपको ले आएंगे आप, लेकिन फिर क्या होगा, जो वजारत तालीम है हमारी उस पर स्मृति ईरानी क्या करेंगे, उनको सेंस नहीं है एजुकेशन की, तो वो कैसे बदलेंगे इस तरह तो ये कैसे श्योर करेंगे आप लोग कि हम आपको वोटिंग करके आपकी। एक आम आदमी क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं मेरा फायदा किस चीज में हो रहा है, आम आदमी ये सोचते हैं, वो नहीं सोचता कि औरत है कौन है नहीं है, ये मेरा क्या करेगी ये सोचता है। तो आपको वोट दिए जाए, आप आए वजारत तालीम आप हासिल करें, वहां पर जाए एजुकेशनल मिनिस्टर बने, उसके बाद आप अगर चेंजिंग नहीं ला पा रहे हैं तो मैं क्या समझूं।
क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन ये है,
ऑब्जर्वेशन तो समझ में आ गया, ऑब्जर्वेशन रखिए।
क्वेश्चन ये है कि प्रोडक्ट आप कैसा
दें, इससे पूछ रहे हैं
जो भी वुमेन पावर, क्वेश्चन ये है कि हम तो आपको रिवोल्यूशन करके, यूथ रिवोल्यूशन करके आपको आगे लेके आए, लेकिन वो प्रोडक्ट हमें कैसा मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है कि वो सही मिलेगा या मनोज या असमर्थी ईरानी की तरह मिलेगा।
अच्छा, इधर से आए, अपना परिचय भी जरा दीजिए।
हाँ, माय नेम इज आसिफ जलील, आई एम डूइंग माय एमए फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। आई हैव अ कमेंट एंड अ क्वेश्चन। माय फर्स्ट कमेंट इज मिस प्रभात, आपने कहा था कि अगर पैसे और करोड़पति की बात होनी थी तो आपने कहा था कि अगर पैसे होते तो फिर क्या कहते हैं हमें राइट्स की क्या जरूरत पड़ती, लेकिन अगर आप देखें कि फोर्ब्स के टॉप 10 रिचेस्ट मैन के अंदर इंडियंस हैं, लेकिन 3 इंडियंस उसमें से, उसकी वजह से मुझे कोई राइट्स नहीं मिले। अगर अभी मैं अपना पासपोर्ट लेकर बाहर जाऊं तो एज एन इंडियन मुझे बिल्कुल जीरो राइट्स होता, आप देखें कैसे क्या रवैया होता है और लोगों का मेरे साथ बाहर बाहर के एयरपोर्ट पे। आई एम स्टिल थर्ड, क्या कहते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आ रहा हूं मैं। ये मेरा एक क्लैरिफिकेशन। सेकेंड मेरा क्वेश्चन है, आई डोंट नो इफ आई हैव टू पॉइंट आउट द आयरनी ऑफ दिस सेमिनार इज दैट वी टॉकिंग अबाउट यूथ एंड पॉलिटिक्स, बट द student union elections in Jamia have been banned for almost a decade now. And my question is actually to both Ms. Alka and Ms. Shazia, because you've been, Shazia, Ms. Shazia has been a student of here and you've won the student union election. So do you support, or what do you say about the elections being banned, and if you actually support the elections, then why haven't any of you said anything about it yet? Thank you.
Third question, yes.
Myself, well, I'm from the university. My question is, I'm from the university. I'm from the university. I'm from the university. I'm from the university. So, first question is, if you have a youth, you have to be in the election, in the boards, उसके बाद में फिर सब भूल जाते हैं और उसको कोई भी बात है किसी के समझ लीजिए सर इलेक्शन है या कुछ और है, कोई किसी सपोर्ट के लिए जाता है पॉलिटिशियन के, उसको नहीं सुना जाता। उसके बाद में यह है कि यूथ के लिए कितनी बार पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठा है कि इनको भागीदारी मिलनी चाहिए, हर पार्टी को 10-15% ये कोटा रखना चाहिए कि इसमें हम मैन एंड वुमेन दोनों यूथ को हम टिकट देंगे। ये पार्लियामेंट में क्वेश्चन कभी रेज हुआ है या आम आदमी के लोग या नेक्स्ट सेशन में इसको रेज करेंगे, ऐसा कुछ अशोर्टी है। और दूसरा ये जो अभी इन्होंने पूछा स्मृति ईरानी या जो है हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर से एक सांसद है उनका चाप आदि राहत, तो ऐसे लोगों को कब तक लाएंगे और जो है अगर वो ला रहे हैं तो क्या उसका
मैं सबसे पीछे जाती हूँ हर चलिए फिर आपके पास आऊंगा फिर आपके पास फिर इधर नेक्स्ट राउंड अच्छे से आर्टिकुलेट कर लीजिए क्वेश्चन फोकस होना
चाहिए
एनजीओ रन कर रहे हैं मैं जिस रूप से हूँ और कई सालों से भी कॉल कनेक्ट से भी कनेक्ट रहे हैं तो मेरा सवाल और जवाब कुछ मिक्स है। उसमें मैं ये चाहूंगा कि जो आप ये मुद्दा उठा रहे हैं यूथ और वुमेन को लेकर चलिए वुमेन का 33% रिजर्वेशन परसेंट आज में हुआ अच्छी बात थी लेकिन मैं नेशनल लेवल मॉनिटर पंचायत में बताता हूँ जहाँ विमेन प्रधान वहाँ उसका हस्बैंड होता है उसको बेचारे को पता नहीं होता। तो मेरा आपसे एक सजेशन है जहाँ आप रिजर्वेशन के लिए लगाई बन रहे हो 30% तक ले जाने के लिए है तो आप उनको उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए भी आगे आए क्योंकि वो अपने अधिकारों का स्वयं प्रयोग करें।
ठीक है
my question is like it's related to this question actually because as we had been talking about the women participation in the rural areas most of the women have voted so I was just wondering whether this is this has had any impact because in rural areas what happens that it is the patriarch in the family who decides to whom the woman should vote so this this sense that there is no questioning to the patriarchal order in the household.
I can't resist because there is this young girl who wants to ask a question. नौजवानों ने वोट दे के ये पार्लियामेंट बनाई और इस पार्लियामेंट में सिर्फ 11% महिला है और जो ये बूढ़ी पार्लियामेंट है अगर आप इसकी मेजोरिटी देंगे तो ये बूढ़ी पार्लियामेंट है। नौजवानों ने वोट दिया और पार्लियामेंट बूढ़ी बन गई तो इसका एक ये मुद्दा देखने की कोशिश मैं अच्छा आप एक तरफ से शुरू करने का शॉर्ट में इनका जवाब दो ही रास्ते भी बचे हुए हैं हम दोनों को बदलना चाहते हैं। पहला रास्ता ये कहता है कि पुत्र की चाह में गर्भ में बेटियों को ही मारते चले जाओ वो 6 नहीं 12 चल बच जाए राइट और एक रास्ता ये कहते हैं कि पुत्र की चाह में 6 बेटियां थी लेकिन मेरे 40 साल पहले की बात है तो प्लीज मुझे अभी 40 साल लेकिन आज दोनों को बदलना है। आज पुत्र की चाह में ना गर्भ में बेटियां हैं सामाजिक सोच कि महिला को दबाव मत करिए कि गर्भ में अगर बच्ची पैदा लगी तो उसे मारिए और अगर जो है पैदा भी ना करिए। मैं दोनों के कह रही हूँ ये सोच है समाज की सोच है उसे बदलने के लिए लड़ाई है जिसपे मैं कन्यापूर्ण काम करूँ
दो चीजें इसलिए बेटे की चाह ज्यादा है क्योंकि भाई बेटियां होंगी तो महंगी होंगी जहेज देना होगा। कितना अजीब हमारा समाचरा है कि बेटी को जहेज है जहेज की प्रथा को खत्म नहीं करेंगे बेटियों को खत्म कर देंगे। मतलब सोचिए कितना अफसोस की बात है। आप जहेज को खत्म कीजिए आप वो सब सारी जो ईद से हंसो खत्म कीजिए बेटियों को खत्म कर रहे हैं। बेटियों को खत्म करने का तो जिंदगी खत्म करना खुद को खत्म करना तो बहुत ही बेवकूफी है। आपने यूथ की बात उठाई भाई साहब
मैं ये नहीं कह रही कि आप नेशनल ना करें लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ ओवर पॉपुलेशन
कुछ
ज्यादा हो रही है।
मुझे जाना है तो मैं आखिरी चीज आपने युवा शक्ति की बात की लेकिन मैंने बार बार मैं आपसे कह रही हूँ कि हम औरतों को चाहते हैं क्यों क्या तो सिर्फ औरत है। हमने देखा बीबी जागीर फ्रॉड ने क्या किया हमने देखा कांग्रेस की जो विमेन लीडर्स हैं और बीजेपी की वो कैसे बोली हमने सुना सुषमा स्वराज को जिंदा लाश निर्भय को डिस्क्राइब करते हुए हमने देखा रीता बहुगुणा और मायावती दोनों को रेप के इशू को बहुत मजाक में लेते हुए और उनकी सीधी बातें करते हुए। تمہارے گھر میں ہوتا تو پتہ چلتا, ہمیں تو سیریسنس وومن میں بھی نظر نہیں آئی. تو کئی جگہ پہ جینڈر سینسیٹیو مین وڈ بی مچ بیٹر دین جسٹ جینڈر, بیکاز شی از اے ریپوزیٹری آف دا سیم فیوڈل پیٹریارکل بلیفز اینڈ شی از مچ ورس دین آف. سو جسٹ وی ہیو ٹو چینج دیٹ, اٹس اے مائنڈ سیٹ, اٹس ناٹ دا فیس آف پاور. یووا میں بھی سنگاپور کے لیگ وان یو کو دیکھیے, آپ مہاتما گاندھی کو دیکھیے, نیو آئیڈیاز, ریڈیکل آئیڈیاز. عمر زیادہ تھی, اب انڈیا میں رہتی تھی یوتھ لیڈرس کو. آپ کے امن ہیں ہمارے ساتھ میں, امن جی, وہ بتائیں گے کہ پچھلے پارلیمنٹ میں انڈر 48 میں سارے کے سارے جو ایم پی تھے وہ سب ان کے موم یا ڈیڈ یا فادر ان لا یا مدر ان لا کی وجہ سے تھے. تو کیا فائدہ ہوا؟ کیا آپ نے راہل گاندھی کو, جیوترادتیہ سندھیا کو, سچن پائلٹ کو, آگتا سنگما کو, سپریا سولے کو, پرتندھی شنڈے کو کوئی بھی نئی بات یا یوزفل بات یوتھ کے بارے میں بات کرتے ہوئے دیکھا؟ تو وہ اسی لیے ہے, وہ اسی اولڈ سسٹم میں کر رہے ہیں. دی اولڈ آرڈر چینج ول ٹیک پلیس ٹو نیو. اس لیے ضروری ہے کہ آپ اگر نظام کو بدلنا چاہتے ہیں تو سوچ کو بدلیں. صرف شکل بدل دینا کہ مہیلا کو بٹھا دو یا یووا کو بٹھا دو, اس سے کچھ نہیں ہوگا, سوچ کیا ہے. سو پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ ویری لٹرلی, دس از واٹ وی ہیو ٹو گیٹ دیٹ. اور آپ 33% عورتوں کو بھی لے آئیں گے کیا ہوگا؟ راوڑی دیوی سنڈروم. یو ڈونٹ وانٹ دیٹ, وی وانٹ ٹو چینج دیٹ, وچ از وائی یو وانٹ مور اینڈ مور مین اینڈ ویمن ہو بلیو ان جینڈر ایکویٹی. دے مائٹ ناٹ بی ویمن بٹ دے ہیو دیئر بیٹر ویوز فار ویمن اینڈ دیل بی بیٹر لیڈرز فار ویمن دین مینی ویمن ہوتی ہے. وکٹمز آف پیٹریارکی دیمسیلف اینڈ لیٹ می ٹیل یو, ڈاوری فیمیل فیٹیسائڈ آر پرپیچوئیٹڈ as much by men as much by women. So we must recognize that. That's all I have to say.
تو ایک طرح سے سوال آیا ہم کا, شادی جا رہی ہیں اور کئی لوگ ان سے کچھ بات کرنے کے کئی سوال رہ گئے, ان پوچھنے کے اچھک ہیں, کچھ لوگ آپ باہر جا کے کچھ بھی سمجھ سے پڑھے. میں آپ کی بات کا مجھے زندگی کے تجربے سے بھی کئی چیزیں جان چاہیے, آپ کئی چیزیں جاننا چاہتی ہوں, میں کئی چیزیں جیون میں اپنے تجربے سے اس زندگی کے دور میں جو میں نے جان کے بتا دی. آپ نے تو کہا کہ دو میں بھی تین آئے تھے کروڑ پتی, لیکن ان سے ہمیں کیا فائدہ ہوا. اسی طرح آپ نے, میں نے جو بات کہی, میں نے یہ بات کہی تھی کہ وہی کروڑ پتی ایلیٹ میں جو عورتیں ہیں, اگر وہ خود کروڑ پتی, مطلب وہ اس لیے کروڑ پتی کہلا رہی ہیں کہ ان کا پتی کروڑ پتی, پتی انہیں اس کے لیے کتنا رائٹ دے رہے ہیں, کتنا دے رہے ہیں, وہی تو بات میں بھی کہہ لوں, دراصل میں وہ کروڑ پتی ہیں کہ نہیں ہے, یا وہ محتاج نہیں ہے, یا ان کی گھر میں کیا حالت ہے. بھی میں کروڑ پتی تو اگر واقعی وہ ہوتی کہاں ضرورت ہوتی ان کے ابا پر میں, یہ دہیج والی یہ سب باتیں. دوسری بات جو آپ نے پوچھی, اس لیے عورتیں خود کیسے امپاور ہوں, کیا وہ کروڑ پتی بھی ہوں, لکھ پتی ہوں, خود کماتے ہیں اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے, تو وہ زیادہ محسوس تب وہ جا کر کے امپاور ہوں گی. اور مہیلائیں کمزور ہیں, ایسے تو کوئی سیٹ انہیں دیتا نہیں کہیں گے ہار جائیں گی, اس لیے ریزرویشن کی ضرورت ہے. سرپنچ کی بات آئی کہ ان کے پتی چلا رہے ہیں کئی جگہ, انہیں نہیں آتا, دیش جب آزاد ہوا تھا پنچایت راج جب بنا, آدمیوں کو بھی کہیں انگوٹھا سا وہ نہیں آتا تھا, یہ کیسے چلتا ہے سرپنچی کا کام انوبھو سے. میں نے دیکھا ہے کئی مہینوں جن کو سرپنچی کرتے ہوئے سرپنچ کے کام میں دو سال تک ان کو پتی نے مدد کی یا پتا نے بھائی نے, اس کے بعد میں وہ جاتی ہیں کہ میں اپنے آپ کام کروں, انہوں نے کام سیکھا ہے انوبھو سے, پر پتی نہیں چاہتا اپنی جگہ چھوڑنا, اپنی پاور چھوڑنا, وہ کہتا نہیں تم تو گھر میں ہی بیٹھو. وہاں ہم نے بھی آواز اٹھائی ان کا میٹنگ میں بیٹھنا, پتی کا کو جو بھی پراکسی ہے وہ باہر بیٹھنا, میٹنگ کے اندر ان کا بیٹھنا الاؤ نہیں ہونا چاہیے, سرکاری طور پر یہ آدیش ہونا چاہیے, میٹنگ میں وہ بھاگ لیں گے. وہ انوبھو سے جو سیکھیں گے اور جو انوبھو سے سیکھیں گے وہاں بھی پہنچیں گے, وہی آگے اسمبلی تک بھی پہنچیں گے, وہ ایک فارم تیار ہوگی اور تجربے سے سیکھیں. تیسری بات آپ نے ایک جو پوچھی تھی وہ اسمرتی ایرانی والی سے بات آپ کرتے ہیں, میں آپ سے جانا چاہتی ہوں, آپ کیوں ناراض ہیں कई फिल्म में कोई आर्टिस्ट हो गए, कलाकार हुए हैं या सीरियल में हुए हैं, तो कोई भी जनता नचना सुना है, वो यहाँ आए हैं। अब उनकी पार्टी में कौन किसको कौन सी मिनिस्ट्री देता है, ये तो पार्टी के देखने की बात है। दूसरी बात, मैंने भी राज्यसभा में स्मृति ईरानी को मुझसे सुना है, वो बोलती हैं डिबेट में जो पार्टिसिपेट करती रही हैं एज ए एमपी, अच्छा उठती हैं और वो चीज को तकलीफ को समझ के भी बोलती है। बात नहीं है कि कोई यहाँ कोई वो नहीं है, सोच नहीं समझ रही। और जो
और भी कोई एलिट नहीं
है, नहीं वो है, लेकिन सुनिए आप, कोई जरूरी नहीं है, एजुकेशन डिग्री के हिसाब से नहीं, आपकी अपनी बुद्धि और समझ कितनी है किसी बात को समझने की या चलाने की। आप उनका काम देखिए, जाइए, कई देश में ऐसे बड़े बड़े लीडर हुए हैं कि उन्होंने शायद हो सकता है कि ग्रेजुएशन भी ना किया हो और ट्वेल्थ भी ना की हो, लेकिन उन्होंने अपना परफॉर्मेंस, उनका काम अच्छा रहा, बेहतर रहा, वो जनता की बाकी समस्याएं समझें, स्टूडेंट्स की को समझें, उसके अनुसार कितना वो काम कर सकती है, ये उनका काम देखने पर ही आ गया और उसका फैसला किया जा सकेगा। और आखिरी जो आपने कहा कि महिलाएं वो बच्चे पैदा ही, उसमें आप बहन आप जानती हैं ना, ये तो तब परिवार नियोजन वाली बात तो थी 40 साल पहले बच्चे, तो आपने बात पूछी, तब तो ये था कि भाई बच्चे जितने हो गए ऊपर वाले की जो भी दिन है, तो लड़के हो लड़के, लड़के की चाह तब भी थी आज भी। अब फर्क इतना हो गया कि गाँव में चाहे कन्या भ्रूण हत्या कम होती है, लेकिन शहरों में ज्यादा होती है। कारण कि फैमिली प्लानिंग की अवेयरनेस आ गई, लेकिन दो बेटे हो जाए तो चलेगा, दो बेटियां हो गई तो फिर कन्या भ्रूण हत्या होगी, क्योंकि और बेटा तो चाहिए, अगला जन्म सी लिया जाएगा। इसलिए ये सोच तो सामाजिक सोच है, ये कुल दीपक की जो सोच है ना, बेटा कुल दीपक है, उससे कुल चलेगा, खानदान चलेगा, खानदान का नाम रोशन। हालांकि जो एक्सपीरियंस हो गए हैं माता पिता, वो जानते हैं बुढ़ापे में वो नसीब वाले हैं जिनका बेटियां होती हैं। हाँ, वो पराया शादी के बाद बेटी नहीं होती, बेटा भले हो जाए बेटियां नहीं होती, टूट रह के भी अपनी माँ बाप की फिक्र ज्यादा रहती है, ये घटी है। तो अब ये बात लोग समझ रहे हैं और इसमें भी एक सामाजिक सोच से बताओ
उनका आपने आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी इलेक्शन की बात की, अगर व्यक्तिगत मेरी बात पूछेंगे तो मैं बिल्कुल इस बात का समर्थन करती हूँ कि दिल्ली ही नहीं हिंदुस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पर लगभग 18 साल की ऊपर का ही जो है वो स्टूडेंट होता है। तो अगर उसको आप हिंदुस्तान की राजनीति में लोकसभा से विधानसभा नगर निगम तक चुनावी वोट करने का दायित्व दे रहे हैं, तो उसे बिल्कुल इस बात का हक होना चाहिए कि वो जिस विश्वविद्यालय कॉलेज में पढ़ रहा है वहां पर भी उसे वोटिंग का अधिकार हो। तो मैं खुद व्यक्तिगत चुनाव के हर विश्वविद्यालय के छात्र संगठन चुनाव के हक में हूँ और उसकी मांग के साथ जुड़ी हुई हूँ। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी है कि वो हर यूनिवर्सिटी के हर कॉलेज के अंदर जो है हिंदुस्तान के चुनाव चाहता है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि वो एक जगह होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं 18-19 साल की तो मुझे बहुत राजनीति का नहीं मालूम था, लेकिन जब कॉलेज का चुनाव हुए तो कौन सी चीजें सामने आई कि क्यों बहुत जरूरी है, क्यों हमारा पार्टिसिपेशन इनमें जरूरी है। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति अगर छात्र राजनीति से अगर ईमानदारी से शुरू की जाए तो मुझे लगता है आने वाले समय में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को बहुत ईमानदार, बहुत अनुभवी और एक एक मिशन के साथ उसके उसको क्या देखना चाहता है, उसके लिए उसका प्लानिंग क्या है, उस प्लानिंग को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करने की सोच रहा है, पूरा प्लान ऑफ एक्शन लेकर वो आगे बढ़ता है। तो मुझे लगता है उसे बहुत ताकत भी मिलती है। बिकॉज अभी जैसे प्रवर जी ने कहा कि आप महिलाओं के आरक्षण कर दीजिए या फिर आप युवाओं को परिवार के नाम पर ही ले आइए, लेकिन अनुभव जीरो है, वो एक खानापूर्ति ही होकर रह जाती है। हम लोगों ने पार्लियामेंट में सुना कि पहली देश की महिला राष्ट्रपति हुई, पहली महिला स्पीकर पार्लियामेंट को मिली, पहली विपक्ष की नेता महिला थी, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि निर्भया कांड तक हमारे बीच में हो रहा था। महिलाओं की अगर सुरक्षा से जोड़कर देखें तो महिलाओं के पार्टिसिपेशन की बात देखें तो इतने 7 सालों में बहुत सरकारें आई, आज की भी सरकार के लिए 33% रिजर्वेशन होना चाहिए। कांग्रेस ने भी 10 साल सत्ता में ली, 33% रिजर्वेशन मैनिफेस्टो में था, हाथ में क्या लगा, जीरो। तो बात यह है कि मैं आप सबको भी कहूंगी आपको मौका मिलना चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी में चुनाव। और हाँ, एक समस्या थी, इस पर बैन लगाया गया। मैं जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रचार के लिए गई तो मुझे समझ नहीं आया मैं बाप का प्रचार कर रही हूँ या बेटे का, क्योंकि पता लगा मैं बेटे का नाम ले रही हूँ पर चुनाव पिता नजर आ रहा था जिस पिता की उम्र जो है वो 50 से ऊपर थी, क्योंकि चुनाव की कोई आयु सीमा नहीं थी। हिंदू रिपोर्ट जो आयोग उठाया गया उसने कुछ सिफारिशें दी कि युवाओं का छात्रों का मोह भंग क्यों हो रहा है छात्र चुनाव से, वो क्यों चाहते हैं कि इसे बैन कर दिया जाए, क्योंकि हुआ ये कि अपने राजनीति साधने के लिए राजनीति बड़ी पार्टी में एंट्री के लिए कोई भी किसी भी उम्र में दोबारा एडमिशन लेकर चुनाव लड़ जाता था और सिर्फ उसका मकसद ये होता था कि मुझे उम्र की राजनीति में एंट्री चाहिए। लिंडो रिपोर्ट ने पाबंदी लगा दी, लिंडो रिपोर्ट ये कहती है कि 25 साल से अधिक उम्र का चुनाव लड़ ही नहीं सकता, नंबर वन। नंबर टू, आपको रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए उस यूनिवर्सिटी का। नंबर थ्री, आपकी अटेंडेंस अच्छी होनी चाहिए। नंबर चार, आपका रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए और आपकी कम से कम पेपर कुछ क्लियर होना चाहिए, नहीं कि सिर्फ आप मेला ही लगे हुए। तो ये सब चीजें आने के बाद बहुत फर्क पड़ा कि एक जेन्युइन लीडरशिप जो है, एक ईमानदार पढ़ी लिखी आगे आई, ना सिर्फ जो अपना भविष्य का राजनीतिक रास्ता खोजने के चक्कर में चुनाव में आ रही थी, लेकिन हुआ ये यूनिवर्सिटी के चुनाव उसके बाद दिल्ली के बाद कोई लगा ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो चुनाव बंद कर दिए गए, रोक लगा दी गई, जो आज भी हमारी लड़ाई, आज भी हमारी मांग केंद्र सरकार से है कि हर विश्वविद्यालय में लिंडो रिपोर्ट आने के बाद तुरंत चुनाव होने चाहिए।
कि मीडिया जो है, मीडिया से आप कृपया अपना माइंड मीडिया माइंड न बनाने लगे, ये मैं आपसे जागरूक रहने की अपील करूं। मीडिया क्या बात बार बार कह रहा है, अहमद कर रहा है, वो क्यों कह रहा है, किस कारण से कह रहा है, उसके पीछे क्या है, टीआरपी है, पीपीपी है, क्या है, आपको नहीं मालूम है। हमको काफी कुछ कई बातें मालूम है, कहना भी नहीं चाहते। आप तो समझें और सोचें, आखिर कोई चल रहा है भंसाई रेडी तो क्यों चल रहा है, उसको कारण होगा उसके पीछे क्या कारण, उससे आप अपना मानस या दिमाग न बनाए, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपनी सोच से, सब चीजों की जानकारी करके आप अपना उससे फैसला करें, उससे सोचिए।
इस बात का मैं भी समर्थन करना चाहूंगी कि मीडिया के बहकावों में मत आइए, न्यूज देखिए, खबर लीजिए, लेकिन उसकी सच्चाई जरूर जानने की कोशिश करिए। मैंने बताई हूँ केस में जो बच्चियों का बलात्कार करके कहा गया, पेट से टांग दिया गया, मैं खुद गई और उसमें जब मीडिया ने उसका महामंडित किया, सच्चाई अभी भी नहीं हमें मालूम है, लेकिन उसके बाद मायावती का प्लेन उतरता है, राहुल गांधी का प्लेन उतरता है, मीरा कुमार स्पीकर सबके हेलीकॉप्टर थे, क्योंकि वो शायद दलित लड़कियां थी जिसको कहा गया कि एक गैंग रेप करके पेड़ से टांगा गया है, लेकिन आज की सच्चाई ये कहती है उनके साथ बलात्कार हुआ ही नहीं था, वो तो बस परिवार ने उनको टांग दिया। सच्चाई हमें मालूम ही नहीं और हम बिल्कुल दौड़ पड़ते हैं हर चीज के पीछे। मुझे लगता है बहुत जरूरी है सोशल नेटवर्किंग साइट मीडिया से ज्यादा एक अच्छा हथियार हो सकता है जानकारी के लिए, क्योंकि हमारे से जो सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर से जो जानकारी जाती है, मुझे ये लगता है अफवाहें भी होती है लेकिन सच्ची खबर अगर किसी को मिलती है तो वो ट्विटर और फेसबुक पर एक नोन आ रही है। अभी मैंने यहाँ बैठ के क्लिक किया, ट्वीट कर दिया है, उसमें कोई भी किसी को भी नहीं डाउट हो सकता है कि अलकन अमर जामिया में बैठ के आप लोगों से बात कर रही है इस टॉपिक पर, उसमें कोई किसी को सच्चाई जानने की जरूरत है कि उसमें कितनी सच्चाई है कि हाँ अलकन अमर वही बैठी हुई है या नहीं बैठी हुई, जामिया स्टूडेंट है या नहीं। यूज योर माइंड and then
I think let me say this that मैं टाइम की बड़ी पाबंद हूँ और मैं बिल्कुल एक मिनट भी ज्यादा और मुझे लग रहा है समय ज्यादा हो गया काफी, तो प्रश्न आपका रह गया लेकिन वो प्रश्न व्यक्तिगत तौर पर अभी मेरे बाहर चाय के लिए तब आप पूछ लेना और उसके बाद फिर हम इस तरह की चर्चाएं जारी रखेंगे। और एक चीज मैं बताऊं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में क्लास में हम कम सीखते थे, क्लास के बाहर ज्यादा, क्योंकि लोकतांत्रिक वहां का माहौल था, तो इसलिए छात्र संघ के चुनाव जरूरी है, सीखने के लिए भी जरूरी है, इसलिए उसमें कोई बहस का मुद्दा नहीं है। अब साथ साथ मैं कहूंगी क्या एक और कोई चाय के लिए हम सब लोग कहां जाएंगे, चाय के लिए।